डॉक्टर रॉबर्ट यारब्रो, पास्टोरल एपिस्टल, सत्र 6, 1 तीमुथियुस 5, 2024 रॉबर्ट यारब्रो और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो और देहाती पत्रों पर उनकी शिक्षा, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश है। सत्र 6, 1 तीमुथियुस 5। हम आध्यात्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए देहाती पत्रों, प्रेरितिक निर्देशों पर अपना अध्ययन जारी रखते हैं। यह केवल पॉल नाम का कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा है, यह परमेश्वर का वचन है। हमारे पहले व्याख्यान में मैंने कहावत का हवाला दिया, मुझे लगता है कि यह 30 श्लोक 5 है, भगवान के हर शब्द का परीक्षण किया जाता है, वह उन सभी के लिए एक ढाल है जो उसकी शरण में आते हैं। और जैसा कि हम 1 तीमुथियुस अध्याय 5 को देखते हैं, यह उस कथन का एक छोटा सा परीक्षण है, क्योंकि अध्याय 5 में बहुत कुछ है जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते कि यह सीधे तौर पर हम पर लागू होता है, और एक अर्थ में यह नहीं भी है। आप NIV शीर्षक से देख सकते हैं कि अध्याय 5 सभी एक ही शीर्षक के अंतर्गत है, और वह है विधवाएं, बुजुर्ग और दास। और यह हो सकता है कि उस विवरण से आपका किसी से कोई सीधा संपर्क न हो, तो आप कह सकते हैं, अच्छा, मुझे 1 तीमुथियुस 5 की आवश्यकता क्यों है? लेकिन मुझे लगता है कि हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि खासकर यदि आप एक पादरी हैं या आप एक महत्वाकांक्षी पादरी हैं, तो मुझे लगता है कि आप यह देखने जा रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, यदि हम सब नहीं तो हम में से। और सबसे सीधे तौर पर मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, जो यह है कि यह शायद आपके द्वारा पढ़ी जाने वाली किसी भी देहाती पत्री टिप्पणी में नहीं होगा, लेकिन तिमोथी पर पॉल द्वारा जीवित रहने, खुद को ईश्वरीयता के लिए प्रशिक्षित करने और फिर मंत्री बनने का आरोप लगाया जा रहा है। इस रीति से सुसमाचार सुनाओ, इस रीति से मसीह की सेवा करो कि परमेश्वर के लोगों में भक्ति हो। और कुछ ऐसा जिसके बारे में पुराना नियम बहुत स्पष्ट है और जिसे हम बार बार प्रतिबिंबित होते देखते हैं, और यहां तक कि क्रूस पर यीशु तक भी हम शिक्षा को प्रतिबिंबित देखते हैं, अपने पिता और अपनी माँ का सम्मान करें। और क्रूस पर यीशु ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी माँ मरियम का ध्यान रखा जाए। उसने ऐसा क्यों किया? ठीक है, वह एक कोमल हृदय वाला व्यक्ति है, लेकिन इसलिए भी कि वह वाचा का पुत्र था, और टोरा वह मार्गदर्शन जो भगवान अपने लोगों को देता है, और यह डेकालॉग में है, यह 10 आज्ञाओं में है, अपने पिता और माता का सम्मान करें। प्राचीन काल में आज की तरह आम तौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं, और साथ ही कई बार क्योंकि महिलाओं ने अपने जीवन में इतनी सेवा की है कि यदि उनके पति मर जाते हैं तो वे अपेक्षाकृत अपने समाज की दया पर निर्भर होती हैं। कई बार पतियों ने उतनी बचत नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी, और मैं अब प्राचीन काल में होने वाले विवाहों और आज के विवाहों के बारे में सामान्यीकरण करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर पीढ़ी के सामने बुजुर्ग लोगों से निपटने की चुनौती होती है, और अधिकांश बुजुर्ग महिलाएं होंगी। यह प्राचीन विश्व में सत्य था, जीवन प्रत्याशाएं, यह हमारे लिए भी सत्य है। इसके अलावा हम सभी के माता पिता हैं, और यदि हमारे माता पिता हैं तो हमें उम्र बढ़ने के साथ उनकी देखभाल करने के लिए कहा जाता है। अब हमारे भाई बहन हो सकते हैं और हम उन्हें ऐसा करने देते हैं, और यह ठीक हो सकता है, लेकिन यह ठीक नहीं हो सकता है। आप पा सकते हैं कि भगवान आपको वहां कदम रखने के लिए बुलाते हैं जहां आपके माता पिता या आपके भाई बहन, जिन्हें आपके माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, हो सकता है कि वे करीब रहते हों या कुछ और, लेकिन कभी कभी हम पाते हैं कि हमें अपने माता पिता की देखभाल करने की जरूरत है, और सांख्यिकीय रूप से यदि आप जीवन के अंत तक उनकी देखभाल में वफादार हैं, तो आप एक विधवा की देखभाल करने जा रहे हैं। वह विधवा तुम्हारी माँ बनने वाली है। इसलिए जो चर्च विधवाओं की देखभाल के प्रति उदासीन हैं, उनके लिए एक बड़ा अंध स्थान है, क्योंकि हर चर्च में जितने अधिक लोग होते हैं उतनी ही अधिक विधवाएं उन लोगों के साथ जुड़ी होती हैं, अगर और कुछ नहीं तो उनकी माताओं और दादी के रूप में, वे लोग जिनसे वह चर्च जुड़ा हुआ है। और मैं आपके समाज के बारे में नहीं जानता, लेकिन अमेरिकी समाज इसे काफी हद तक सरकार पर छोड़ देता है, और उन माताओं और दादी नानी को बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है जिनकी उनके परिवार द्वारा देखभाल नहीं की जाती है। और कभी कभी चर्च और ईसाई इस सांस्कृतिक भूलने की बीमारी का हिस्सा होते हैं कि वे उन वृद्ध महिलाओं के प्रति उत्तरदायी हैं जिन्होंने बचपन में उनकी देखभाल की थी। इसलिए यह मत सोचिए कि अध्याय 5 केवल इसलिए अप्रासंगिक है क्योंकि हम उसमें विधवाओं के बारे में बहुत कुछ देखने जा रहे हैं, क्योंकि यह हमारी अपनी सेटिंग पर लागू होता है। लेकिन वह इस तरह शुरू करता है, किसी बड़े आदमी को कठोरता से मत डांटो। वह ऐसा क्यों कहेगा? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पहले ही 1 तीमुथियुस में देखा है कि कुछ अव्यवस्था है, और तीमुथियुस को लोगों को आदेश देने और लोगों पर चीजों को वापस रखने के लिए आरोप लगाने की जरूरत है जहां उन्हें होना चाहिए। उसे सच्ची शिक्षा की पुष्टि करने और नैतिक जीवन और अनुबंधित जीवन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग भी हैं जो घासफूस में डूबे हुए हैं, वे इसे सही नहीं कर रहे हैं और उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन वह कहते हैं, किसी बूढ़े आदमी को सख्ती से मत डांटें, परंतु उसे अपने पिता के समान उपदेश करो मानो वह तुम्हारा पिता हो। यहां फिर से पर्दे के पीछे अपने पिता और अपनी माँ का सम्मान करें, तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। छोटों के साथ भाई जैसा व्यवहार करो, छोटों के साथ भाई जैसा व्यवहार करो। तो ऐसा नहीं है कि वे बदमाश हैं। आप सोच सकते हैं कि वे बदमाश हैं, लेकिन उन्हें तिरस्कारपूर्ण तरीके से न समझें। उनका सम्मान करें और उनके साथ भाइयों जैसा व्यवहार करें। वृद्ध महिलाएं माँ के रूप में होती हैं, जिसका अर्थ है स्नेही, देखभाल करने वाली, सम्मानजनक और विचारशील। और छोटी महिलाएं पूर्ण पवित्रता के साथ बहनों के रूप में। इसलिए मैं यहाँ यह अवलोकन कर रहा हूँ कि देहाती नेतृत्व, जो विस्तार से शिष्यत्व आउटरीच है, जब आप देहाती नेतृत्व कर रहे हैं तो आप शिष्य बना रहे हैं, और जब आप देहाती नेतृत्व अच्छी तरह से करते हैं और आप शिष्य बनाने में मदद करते हैं, तो जो चीजें हो रही हैं उनमें से एक यह है कि वे सीख रहे हैं कि उन्हें आपके उदाहरण से अन्य लोगों को शिष्य बनाने के लिए क्या चाहिए। तो आप एक माहौल बनाते हैं कि एक युवा पुरुष द्वारा अधिक उम्र के पुरुषों को किस तरह से सम्मान दिया जाता है, एक उम्रदराज व्यक्ति द्वारा कम उम्र के पुरुषों को किस तरह से सम्मान दिया जाता है, जैसे कि टिमोथी कुछ उम्र में बड़े हैं, और फिर महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हमारे पास कभी कभी लोगों के एक समूह के बीच वह होता है जिसे हम लोकाचार कहते हैं, और किसी चर्च में नस्लीय पूर्वाग्रह जैसा लोकाचार हो सकता है। ऐसे चर्च हैं जहां आप देखते हैं हम यहां की जातीयता अन्य जातियों के बारे में गंदी बातें कहती है। वह बहुत ईसाई नहीं है, लेकिन यह आयु समूहों के साथ भी हो सकता है। आपको युवा चर्च मिलते हैं और वे बूढ़े लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वे एम्पलीफायरों को सिर्फ इसलिए बंद नहीं करेंगे क्योंकि इससे सभी वृद्ध लोगों को टिनिटस से तकलीफ होती है, क्योंकि वे वही बनना चाहते हैं जो वे बनना चाहते हैं। और आपको वृद्ध लोग मिलते हैं जो युवाओं और उनकी पूजा शैलियों से नफरत करते हैं, वे वहां नहीं जाना चाहते, और इसलिए शैलियां हैं। लोगों के प्रति सम्मान की कुछ शैलियां चर्च में स्थापित हो जाती हैं, और इसकी शुरुआत देहाती नेता से होती है। और देहाती नेता और नेताओं को उन चीजों के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है जिन्हें समायोजित करने की जरूरत है और जिन चीजों को बदलने की जरूरत है और उन्हें बेहतर सम्मान के लिए माहौल तैयार करने की जरूरत है। इसके अलावा देहाती नेतृत्व यह विनम्रता की मांग करता है। यह दूसरों के प्रति सम्मान और स्नेह की मांग करता है। यदि आप किसी को अपने पिता के समान मानने जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि ठीक है पिताजी। यह कुछ ऐसा नहीं है जो घिनौना और घिनौना हो। यह असली है। यह आपके पिता हैं और शायद आप चाहते हैं कि वह होते। शायद आपके पिता सम्मानित नहीं थे लेकिन आप वृद्ध पुरुषों के साथ सम्मानजनक पिता की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और यह आश्चर्यजनक है कि कैसे देहाती नेतृत्व में लोग अक्सर उस स्तर तक बढ़ जाते हैं जिसका श्रेय आप उन्हें देते हैं। यदि आप उनके साथ उदासीनता से व्यवहार करते हैं या आप उनके साथ व्यवहार करते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें। यदि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, यदि आप उनकी पीठ पीछे मजाक बनाते हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। कई बार लोग आपको बहुत परेशान करते हैं दुख का, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि जब आप लोगों की परवाह करते हैं और भगवान इसे जानता है और आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और आप अपनी देखभाल का प्रदर्शन करते हैं तो कई बार लोग प्रतिक्रिया देते हैं और आप उन लोगों के प्रति स्नेह विकसित करते हैं जो शायद पहले शायद आपको पसंद भी न हो। तो यह एक लोकाचार है और देहाती नेतृत्व इसी की मांग करता है। और दूसरों के लिए यह सम्मान और यह स्नेह कविता के अंत में महिलाओं और माताओं और महिलाओं छोटी महिलाओं को बहनों के रूप में बात करने के बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा गुण है पूर्ण या पूरी शुद्धता के साथ। और निःसंदेह यह युवा महिलाओं के संबंध में है। हम यहाँ टिमोथी के बारे में बात कर रहे हैं। वह एक आदमी है और पुरुषों के पास केंद्रीय ड्राइव होती है और महिलाओं के पास केंद्रीय ड्राइव होती है और वे ईश्वर प्रदत्त हैं और इसलिए उन्हें राक्षसी या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। वे सृष्टि के आदेश को पूरा करने की दिशा में अनुग्रह का एक साधन है। हम में विपरीत लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध बनाने की चाहत होती है और मुक्ति का परिणाम सामान्य अनुग्रह की दृष्टि से बच्चे हैं जो ईश्वर की ओर से एक उपहार हैं। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि चूंकि हम एक पापी दुनिया में रहते हैं इसलिए हमारी प्रेरणाएं शुद्ध नहीं हैं। हम उन चीजों से आकर्षित होने में बहुत सक्षम हैं जो हमारे लिए स्वस्थ नहीं हैं। और इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने के तरीके सीखने होंगे ताकि उन्हें वैध और मुक्तिदायक तरीके से तैनात किया जा सके। अब अफगानिस्तान में अभी एक रणनीति चल रही है और यह सार्वजनिक रूप से महिलाओं की एक रणनीति है जिसे केवल उनकी आंखों से देखा जा सकता है यदि उन्हें सार्वजनिक रूप से अनुमति भी दी जाए। और यहां तक कि अब समाचार प्रसारित करने वालों को भी बुर्का या कुछ भी पहनना पड़ता है ताकि आप बस इतना ही देख सकें। लेकिन यह कोई ईसाई रणनीति नहीं है। ईसाई रणनीति हर चीज को कवर करने की नहीं है। ईसाई रणनीति यह है कि हृदय को ईश्वर के वचन से शुद्ध किया जाए। यीशु आंखों पर पट्टी बांधकर या लोगों पर कंबल डालकर नहीं घूमता था। यीशु हृदय के शुद्ध थे। धन्य हैं हृदय के शुद्ध लोग। और पौलुस तीमुथियुस से कहता है, हे तीमुथियुस तू हृदय का शुद्ध मनुष्य बन। वह व्यक्ति बने। और हम पहले ही कई बार अच्छे विवेक की बात सुन चुके हैं। विश्वास के माध्यम से हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है और भगवान के साथ संवाद और भक्ति के उपयोग के अभ्यास के माध्यम से हम अपनी कामुक ड्राइव के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, ताकि उन्हें भगवान का सम्मान करने वाले तरीकों से तैनात किया जा सके और हम महिलाओं को सापेक्ष पवित्रता के साथ सम्मान दे सकते हैं। अब वह कहते हैं कि एनआईवी में पूर्ण शुद्धता है। ग्रीक में यह शब्द बिल्कुल पवित्रता है। मुझे लगता है कि वह हर संभव शुद्धता की बात कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पूर्ण शुद्धता संभव है। तुम्हें पता है, हम पापी हैं और हम कम से कम अशुद्धता की संभावना के प्रति सचेत हैं। मुझे लगता है कि भगवान स्वयं अशुद्धता के बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान को लुभाया गया है, या मुझे नहीं लगता कि वह अशुद्ध होने की संभावना का आनंद लेते हैं। इस जीवन में हम अभी तक ईश्वर सदृश नहीं हैं, लेकिन हम उतने ही शुद्ध हो सकते हैं जितना कि सुसमाचार और पवित्र आत्मा हमें उस क्षण में बनाते हैं, और ईश्वर की कृपा के सापेक्ष वह पूर्ण है। इस समय और जिस समय हम अपनी सेवकाई में हैं, हम परमेश्वर के प्रति बिल्कुल सही हो सकते हैं। इससे चर्च में गठजोड़, दोस्ती, माम बेटे और भाई बहन के संबंधों की एक अद्भुत संभावना खुलती है, जो चर्च में मंत्रालय के लिए उतनी ही शक्तिशाली है जितनी एक मजबूत शादी एक पादरी के लिए होती है जिसका अपनी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता होता है और अच्छी तरह से संवाद करते हैं और एक दूसरे के प्यार में खुश होते हैं और उनका विवेक साफ होता है और उन्हें यकीन है कि वे अन्य पुरुषों और महिलाओं के साथ मेलजोल में शामिल नहीं हैं। तो वहां ईश्वर की बहुत मजबूत उपस्थिति है और वैवाहिक प्रेम का आनंद है। यह एक बहुत मजबूत शक्ति है और यह विवाह में जीवन और सेवा के लिए आनंद उत्पन्न करती है। आप चर्च में वृद्ध महिलाओं और युवा महिलाओं के साथ कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। भरोसे के रिश्ते, विधवाओं की प्रार्थना सेवकाई को महत्व देने के संबंध। और कभी कभी मुझे पता है कि एक महिला थी जो उस चर्च में लगभग 100 वर्ष की होने तक, जिसमें मैंने कई वर्षों तक सेवा की थी, वह अभी भी स्वागत करने वालों और स्वागत करने वालों की देखरेख करती थी और वह एक नर्सिंग होम में रहती थी। वह सेल फोन का उपयोग नहीं करती थी, लेकिन वह हर हफ्ते फोन पर अपने चार्ट रखती थी और उसने इसे तब तक जारी रखा जब तक वह लगभग 100 वर्ष की नहीं हो गई। पिछले कई वर्षों में बस उसे नर्सिंग होम से लाती थी और लोग उसे अंदर लाते थे और वे उसे सहारा देते थे और वह नहीं बैठेगी। उसे नार्टेक्स में एक पीठ के सामने खड़ा किया जाएगा और वह स्वयं सभी का अभिवादन करेगी। और उसने प्रार्थना की। वह धर्मात्मा थी, वह विनम्र थी, वह बहुत आत्मग्लानी करने वाली थी। वह हमेशा कहती थी, ओह, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ ज्यादा समय तक रह पाऊंगी या नहीं। वह ऐसा तब कह रही थी जब वह 85 वर्ष की थी और तब जब वह 90 वर्ष की थी और फिर 95 और फिर 98 वर्ष की थी। मुझे लगता है कि वह लगभग 101 तक जीवित रहे, लेकिन वह एक वृद्ध महिला का उदाहरण थी जो उस चर्च के मंत्रालय में बहुत मूल्यवान थी। वह सबसे आगे बैठी थी और चाहे आप प्रवचन में कहीं भी हो, यदि आप रुकेंगे और कोई प्रश्न पूछेंगे तो वह उत्तर देने वाली पहली व्यक्ति होंगी। वह पूरे समय वहीं थी। इसलिए बड़ी उम्र की महिलाओं को अपनी माँ के समान माने और फिर छोटी महिलाओं को बहनों के रूप में। यह बहुत से पुरुषों के लिए बहुत कठिन है और यह एक चुनौती है जिसका पुरुषों को सामना करना पड़ता है, खासकर यदि वे अपने जीवन में एक ऐसे चरण से गुजरे हैं जहां वे अश्लील साहित्य में शामिल रहे हैं, जो कि आम बात है, क्योंकि यह शारीरिक रूप से कमजोर करने वाला है और यह भावनात्मक और नैतिक रूप से कमजोर करने वाला है। लेकिन ईश्वर की कृपा हमें उससे शुद्ध कर सकती है और हमें उस अंधकार के नीचे की ओर खींच सकती है। और उन लक्षणों में से एक जो हमें उस अंधकार से मुक्ति दिला रहे हैं वह है युवा महिलाओं का सम्मान करने की हमारी क्षमता, जिन्हें कभी ऑनलाइन या प्रिंट में अश्लील तरीकों से आपत्तिजनक रूप से पेश किया गया हो। हम उन्हें देखना शुरू करते हैं कि वे भगवान की दृष्टि में क्या हैं, जो भगवान की छवि में बनाई गई महिलाएं हैं, जो हमारी सेवा के लायक हैं, जो वफादार मंत्रालय के लायक हैं और हमारी प्रार्थना के लायक हैं, और जो शुद्ध तरीके से हमारे सम्मान के लायक हैं, जिसे सुसमाचार ला सकता है। पुरुषों के जीवन में, यहाँ तक कि हमारी जैसी लंपट संस्कृति में भी, जो सब कुछ बेचने के लिए सेक्स का उपयोग करती है। और मुझे बताया गया है कि साल दर साल जब वे पढ़ाई करते हैं तो सर्च इंजन में जो शब्द सबसे ज्यादा टाइप किया जाता है वह सेक्स है। तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सेक्स को वस्तु बना दिया गया है और पश्चिम में अनैतिकता को सामान्य बना दिया गया है। वास्तव में अब यदि आप कहते हैं कि अनैतिकता गलत है, खासकर यदि आप कहते हैं कि कुछ प्रकार की अनैतिकता गलत है, तो वे इसे घृणास्पद भाषण कहते हैं और इसका अपराधीकरण किया जा रहा है। फिर भी हमारे यहाँ जो आदर्श है वह विपरीत लिंग के सदस्यों के संबंध में उन तरीकों से है जिनका वर्णन भगवान के शब्द करते हैं, वह उन्हें देखता है। यदि वह युवा महिलाओं को देखता है, क्योंकि हमारे सामान्य पिता के रूप में भगवान हैं, तो हम एक परिवार के सदस्य हैं और हमारे पास उन्हें पवित्रता के साथ सम्मान करने की क्षमता है, जैसे हम एक वफादार छोटी बहन को मानते थे। और यह एक खूबसूरत बात है और मुझे लगता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है कि वह अगले भाग की प्रस्तावना करते हैं जो विधवाओं के बारे में है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई संयोग है कि उनके पास श्लोक एक और दो हैं, क्योंकि श्लोक एक और दो एक तरह से स्वस्थ संबंधों का सारांश हैं जो चर्च में विभिन्न आयु समूहों और दो लिंगों के बीच होने चाहिए। तीमुथियुस के लिए जो सत्य है वह अन्य मनुष्यों के लिए भी सत्य होना चाहिए। वृद्ध पुरुषों को उन छोटे पुरुषों का सम्मान करना सीखना चाहिए जो उनका सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे पास श्लोक एक और दो में सभी आयु वर्गों के सापेक्ष दोनों लिंगों के लिए सकारात्मक भावना है। अब यदि हम इसे स्थापित कर लेते हैं और यह सुसमाचार द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो विधवाओं का क्या होगा? 5:03 उन विधवाओं को उचित पहचान दो जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। अब आप जहां भी देखें वहां विधवाएं हैं, लेकिन जब चर्च की पूरी सभा के संसाधनों की बात आती है तो उनमें से कुछ को वास्तव में जरूरत नहीं होती है। श्लोक 4 में कहा गया है कि यदि किसी विधवा के बच्चे या पोते पोतियां हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने परिवार की देखभाल करके और इस प्रकार अपने माता पिता और दादा दादी को प्रतिशोध देकर अपने धर्म का पालन करना सीखना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को प्रसन्न करता है। यह कई परिवारों के लिए जीवन बदलने वाला वचन है और कई परिवार इसे अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्थान परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। आपको इस व्यक्ति के निकट रहने के लिए हिलना पड़ सकता है या आपको इस व्यक्ति को हिलाना पड़ सकता है ताकि वे आपके निकट हो सकें। लेकिन मैं यहाँ पॉल द्वारा कही गई बात को दोहराना चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई विधवा है जिसके बच्चे या पोते पोतियां हैं, तो यह एक तरीका है जिससे हम अपने धर्म को व्यवहार में ला सकते हैं। और हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे पॉल ने तीमुथियुस को प्रोत्साहित किया, कैसे मैं अधिनायकवादी शब्द का उपयोग सकारात्मक अर्थ में करूंगा। शिष्यत्व के आह्वान में ईश्वर अधिनायकवादी है। वह यह नहीं कहते, मैं तुम्हें पूरी तरह समर्पित होने के लिए कहता हूँ। अब आप उन चीजों के आगे तारांकन चिन्ह लगा देते हैं जिन्हें आप अपना कौशल सेट नहीं मानते हैं। वह कहता है, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार बनाने जा रहा हूँ और तुम यह पता लगाओगे कि तुम मेरी कृपा का उपयोग कैसे करते हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आपको कुछ निर्णय लेने होंगे। आपको यहाँ कुछ प्रतिबद्धताएं निभानी होंगी। तुम्हें काम करना है। मैं उस काम को आपकी क्षमता से अधिक फल और आनंद से भर दूंगा, लेकिन शुरुआत में यह उतना सुखद नहीं लग सकता है। और निश्चित रूप से बुजुर्ग लोगों की देखभाल करना मौत की सजा जैसा लगता है, क्योंकि यह आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकता है। और देखभाल की आवश्यकताएं इतनी भारी हो सकती हैं। अब इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि हमें सावधान रहना होगा कि हम यूं ही अति न कर दें। इसमें बहुत अधिक पूर्व विचार की आवश्यकता हो सकती है, और आप अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर सकते हैं। आप किसी के लिए अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी लेकर अपनी शादी को नष्ट कर सकते हैं। मैं नर्सिंग होम और संस्थागत देखभाल के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सेटिंग में कभी कभी लोगों की जरूरतें बहुत अधिक होती हैं, और विशेष रूप से पश्चिमी चिकित्सा का नकारात्मक पक्ष यह है कि लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं, भले ही जीवन की गुणवत्ता कम हो। कम से कम वे वास्तव में चल फिर नहीं सकते, लेकिन उनके पास ऐसी दवाएं हैं जो उन्हें वर्षों तक जीवित रखती हैं, और एक व्यक्ति के लिए उनकी देखभाल करना मानवीय रूप से संभव नहीं है। ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति थकावट से मर जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की देखभाल एक पेशेवर सेटिंग में की जानी है। जहां लोग हैं वहां एक पूरा स्टाफ है, उनके पास लोगों को लेने के लिए मशीनें हैं, और उनके पास दवाएं हैं, और उनके पास अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, और उनके पास कॉल पर डॉक्टर और नर्स हैं। यह बहुत ही परिष्कृत ऑपरेशन है, लेकिन अगर यह सही तरीके से किया जाता है तो भी इसकी निगरानी के लिए पर्दे के पीछे से अधिवक्ताओं की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार की देखभाल मिल रही है उसे अत्यधिक लाभ होता है यदि उसकी कोई ईसाई बेटी या पोती या पोता या बेटा है जो वहां रहेगा और चीजों की देखरेख और प्रबंधन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इस व्यक्ति की उपेक्षा न की जाए। और फिर निस्संदेह बहुत सारी सेटिंग्स हैं। मैं उन स्थानीय सेटिंग्स का नाम बता सकता हूँ जिनके बारे में मुझे जानकारी है, जहाँ महिलाओं या पुरुषों और महिलाओं ने अपने माता या पिता को अपने घर में रखा है और उन्हें अपने घर में तब तक रहने में मदद की है जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई या जब तक उन्हें किसी प्रकार की संस्था में नहीं जाना पड़ा। लेकिन यह ईसाई बेटों, बेटियों, पोते और पोतियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं जानता हूँ कि कई लोगों के लिए यह है, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि कई लोगों के लिए यह नहीं है। वह विधवा जो वास्तव में जरूरतमंद है और बिल्कुल अकेली रह गई है, वह ईश्वर पर आशा रखती है और रात दिन प्रार्थना करती रहती है और ईश्वर से मदद मांगती है। परंतु जो विधवा सुख के लिए जीती है वह जीवित रहते हुए भी मर जाती है। इसलिए वह यहाँ गुणवत्ता पहचान का संदेश दे रहे हैं। विधवाएं दो प्रकार की होती हैं, और हमें विधवाओं पर ध्यान देने और उनमें भक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो अपनी विधवापन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और इसे समर्थन के लिए उपयोग करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में वे ऐसा जीवन जी रहे हैं जो ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें परेशान कर रहा है। लोगों की उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी की भावना का लाभ। और पौलुस कहता है, लोगों को ये शिक्षा दो कि कोई दोष न दे। हम पर विधवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया जा सकता है। हमें उन विधवाओं को सक्षम बनाने के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है जो बेईमान हैं या जो भगवान की देखभाल का लाभ उठा रही हैं। वह एक मिनट में इसके बारे में और अधिक बताएगा, लेकिन अभी वह कहता है कि जो कोई भी अपने रिश्तेदारों और विशेष रूप से अपने घर के लिए प्रदान नहीं करता है, उसने विश्वास से इनकार कर दिया है और एक अविश्वासी से भी बदतर है। जब मैं अपनी टिप्पणी पर काम कर रहा था तो उस श्लोक ने मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बदल दिया, क्योंकि हम इस क्षेत्र से बहुत दूर रह रहे थे। लेकिन जब मैं इस श्लोक पर काम कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ और मेरे सौतेले पिता कितने बूढ़े थे। एक चीज ने दूसरी चीज को जन्म दिया और हम 350 मील दूर चले गए। मैंने एक अलग शिक्षण कार्य लिया और हमने अपनी माँ और मेरे सौतेले पिता की देखभाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे अब ऐसी स्थिति में नहीं थे जहाँ वे रह सकते थे जब तक कि उनके बगल में कोई न हो जो उनकी देखरेख कर सके। जिंदगियाँ और विशेषकर मेरी पत्नी ने नर्सिंग छोड़ दी। वह नर्सिंग कर रही थी, लेकिन उसने नर्सिंग छोड़ दी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह नर्सिंग नहीं कर सकती और वास्तव में मेरी माँ और मेरे सौतेले पिता की देखभाल भी नहीं कर सकती। परंतु ये शब्द जो कोई प्रदान नहीं करता, उसने विश्वास से इनकार किया है और वह अविश्वासी से भी बदतर है। वे बहुत कड़े शब्द हैं और वे एक बार फिर ईश्वर की इच्छा के बारे में बात करते हैं कि हम सब उसके साथ रहें और हम उस पर भरोसा करें। मेरी भविष्य की योजनाओं में मुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं था और मैं बहुत सारे तर्क दे सकता था कि मुझे भाई और बहनें मिल गए हैं और मैं करता हूँ, लेकिन अंत में यह सिर्फ वह रहस्य है कि ईश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है, और इसलिए आपको इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। और यह मत सोचो, ओह मैं एक ईसाई हूँ, जो कुछ ईश्वर मुझसे सीधे तौर पर करने को कहता है उसके विरुद्ध जाकर मैं विश्वास से इनकार नहीं कर रहा हूँ। यह कभी भी अच्छा विचार नहीं है। हनन्याह और सफीरा ने वह प्रयास किया और यह उनके लिए अच्छा नहीं रहा। अधिनियम अध्याय 5 पढ़े। इसलिए किसी भी विधवा को विधवाओं की सूची में नहीं डाला जा सकता है। और यह हमें बताता है कि इफिसुस में उनके पास विधवाओं की एक सूची थी। जाहिर तौर पर उनके पास उनकी देखभाल से कहीं अधिक था, लेकिन वे यह विधवा देखभाल कर रहे थे और उनकी सूची में किसी को भी शामिल नहीं किया गया जब तक कि उनकी उम्र 60 से अधिक न हो जाए। तो यह पहला क्वालिफायर था। उसे अपने पति के प्रति वफादार रहना जरूरी था और उसे अपने अच्छे कामों के लिए मशहूर होने की जरूरत थी। इसलिए उसे एक गंभीर अभ्यासी स्वीकारोक्ति ईसाई बनने की आवश्यकता थी। बच्चों का पालन पोषण जैसे अच्छे कर्म, तुम्हें पता है सृजन जनादेश फिर से, यह एक ईसाई बात है। एक महिला के लिए अपने पति से प्रेम करना और ईश्वर की महिमा के लिए बच्चे पैदा करने की चाहत रखना एक ईसाई बात है। आतिथ्य सत्कार करना, प्रभु के लोगों के पैर धोना, मुझे लगता है कि यह संभवतः रूपक है। लेकिन चर्च में चर्च को अपना काम करने के लिए जो सेवाभावी काम करने पड़ते हैं वे करना, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना और हर तरह के अच्छे कामों में खुद को समर्पित करना। खैर यह काफी लंबा आदेश है, लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं और उनके पतियों की मृत्यु हो गई और चर्च का उन पर कुछ बकाया है। जब उनके पास भक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड और सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड हो, और बहुत सी महिलाएं ऐसा करती हैं, बहुत सारे चर्च इस काम में अच्छा काम करते हैं, और फिर बहुत सारे चर्च वे इसके प्रति काफी उदासीन हैं, तो यह एक बहुत ही प्रासंगिक चुनौती है, विशेष रूप से ऐसे युग में जहां चिकित्सा देखभाल जीवन को लंबा खींच रही है और अधिक से अधिक महिलाएं अपने पतियों के सहयोग के बिना रह रही हैं जो उनके 50, 60 या 70 वर्ष या उससे अधिक समय से हैं। अब तक मेरा अवलोकन यह है कि वृद्ध माता पिता वाले ईसाई उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं। और अगर हम एक कम उम्र की महिला हैं, जिसे हम बाहर प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम सांख्यिकीय रूप से जानते हैं कि किसी दिन अगर हम शादी कर लेंगे तो हम शायद विधवा हो जाएंगे। या मैं हाल ही में एक कक्षा के पुनर्मिलन में था और मैं उन बहुत सी लड़कियों से मिला जिनके साथ मैं 50 साल पहले हाई स्कूल में था, और मुझे बस यह याद दिलाया गया कि तलाक के कारण कितनी विधवाएं हैं। बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं और वे आज जीवन में बाद में भी टूट जाती हैं, और स्त्रियां पुरुषों से तंग आ गई हैं और वे दोबारा शादी नहीं करने जा रहे हैं। उन्हें पुरुषों की जरूरत नहीं है, लेकिन वे बुढ़ापे में चली जाती हैं और उन्हें पति का सहारा नहीं मिलता। अब उनमें से कुछ के लिए यह मुक्तिदायक है और यह एक आशीर्वाद है। लेकिन चाहे आप मृत्यु से विधवा हो या तलाक से विधवा हो, आप अपने जीवन की धार्मिकता के लिए जिम्मेदार हैं, और यह निंदा का शब्द नहीं है, यह सिर्फ तथ्य का एक शब्द और चुनौती का एक शब्द है। ईश्वर की दिशा में आगे बढ़ने में कभी देर नहीं होती। ईश्वरीयता का एक उच्च मार्ग स्थापित करने और चीजों को नीचे या स्थिर होने के बजाय बेहतर करने में कभी देर नहीं होती है। और यदि आप ईश्वर भक्त हैं, तो ईश्वरीयता की पहचान स्थापित करने में बहुत अधिक महीनों और वर्षों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एक तरह से दुर्लभ है। चर्च जाने वाले लोग और आम तौर पर धार्मिक होने वाले लोग दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन सभी लोग मौजूद हैं और लोग वास्तव में प्रार्थना कर रहे हैं और लोग वास्तव में उस वृद्ध महिला की तरह बदलाव ला रहे हैं जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जो किसी भी चर्च में अलग दिखती है, और कोई भी अलग दिखने के लिए ऐसा नहीं करेगा। लेकिन पादरी और महिलाओं के समूह और पुरुषों के समूह लोग तब पहचानते हैं जब कोई दूसरे और तीसरे मील तक जा रहा होता है, और वे परवाह करते हैं और वे भगवान के वचन से प्यार करते हैं और वे ईश्वरीय कृपा को सहन करते हैं। तो तथ्य यह है कि मैं तलाक के बाद विधवा हो सकती हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कभी भी चर्च की देखभाल नहीं मिल सकती है। एक बात के लिए, बहुत सारी महिलाएं तलाकशुदा हैं और इसमें उनकी अपनी कोई गलती नहीं है। कभी कभी केवल पुरुष ही वापस चले जाते हैं, लेकिन भले ही यह आंशिक रूप से आपकी गलती थी, ईश्वर क्षमा करता है, चर्च क्षमा कर सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्च और वर्तमान या भावी विधवाओं के लिए विधवा के रूप में देखभाल के लिए इन योग्यताओं को पहचानना है। और मुझे नहीं पता कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, विधवा की देखभाल या लोग या तो उनकी देखभाल करने की तैयारी कर रहे हैं या विधवा के रूप में देखभाल की जा रही है। पूरी बात, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही कम महत्व वाला अध्याय है। यह पूरी चीज मानव जीवन के सबसे व्यावहारिक पहलुओं में से एक, उम्र बढ़ने और चर्च को किस प्रकार अग्रणी होना चाहिए और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया आध्यात्मिक रूप से कितनी प्रासंगिक है, में सुसमाचार के जैविक कार्य की एक सुंदर तस्वीर है, क्योंकि चर्च में आधे से ज्यादा लोग महिलाएं होंगी और उन सभी महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत विधवा होने वाला है, और ये सभी महिलाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषों से जुड़ी होती हैं। इसलिए चर्च में किसी को भी इस अध्याय में विधवाओं पर दी गई शिक्षा के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत व्यापक है। एक तीमुथियुस की पुस्तक में किसी भी अन्य चीज की तुलना में विधवाओं के बारे में अधिक जानकारी है, और ऐसा इसलिए नहीं है कि यह एक अजीब किताब है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत ही व्यावहारिक किताब है, और यह उस जीवन के बारे में बात करता है जैसा हम वास्तव में जीते हैं। अब कम उम्र की विधवाओं के बारे में क्या ख्याल है? 60 से कम, उन्हें ऐसी सूची में न डालें। जब उनकी कामुक इच्छाएं मसीह के प्रति उनके समर्पण पर हावी हो जाती हैं, तो वे शादी करना चाहते हैं। और शादी करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वे सूची में शामिल हो गए हैं तो अब वे विधवा होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और पॉल कहते हैं, जब सृजन जनादेश की बात आती है तो उन्हें खुद को कम कीमत पर बेचने का प्रलोभन न दें। शायद वे अब बच्चे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी उम्र 60 से कम है, लेकिन वे अभी भी शादी के फल का आनंद ले सकते हैं। वे अभी भी उस पति के लिए एक अच्छी पत्नी हो सकती हैं जिसे एक अच्छी पत्नी की जरूरत है, और वे एक साथ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। और कौन जानता है, शायद वे 90 की उम्र तक विधवा नहीं होंगी, क्योंकि वे 52 साल की उम्र में विधवा हो गईं और उन्होंने 55 साल की उम्र में शादी कर ली, और अब भगवान उन्हें एक ऐसा पति देते हैं जो उनसे प्यार करता है, और वे एक साथ अत्यधिक बुढ़ापे में चले जाते हैं, और यह एक जीत जीत है। यह पति की जीत है, यह पत्नी की जीत है, यह चर्च के लिए एक जीत है, क्योंकि उसे किसी सूची में जाने और चर्च द्वारा दी जाने वाली सहायता लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही वह अपनी माँ या दादी या अन्य विधवाओं या चर्च की अन्य वृद्ध महिलाओं को सहायता देने में सक्षम हो सकती है। जीत 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 जीत। यदि वे विधवा होने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं तो वे स्वयं पर निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली प्रतिज्ञा तोड़ दी है। और कुछ लोग सोचते हैं कि यह एक विधवा के रूप में सूची में शामिल होने की प्रतिज्ञा है, और कुछ लोग सोचते हैं कि यह ईसाई होने की प्रतिज्ञा है। सबसे पहले उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मसीह के प्रति वफादार रहना है। उन्होंने अपनी केंद्रीय इच्छाओं का पालन करके मसीह के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा तोड़ दी है। जब वे पहले से ही विधवा होने के लिए प्रतिबद्ध थे, तो मुझे लगता है कि यह अविवाहित रहने और विधवा होने की प्रतिज्ञा है, ईसाई होने की प्रतिज्ञा नहीं। इसके अलावा, और मुझे लगता है कि यह पॉल का अवलोकन है, उन्हें बेकार रहने और घर घर घूमने की आदत हो जाती है, और न केवल वे आलसी बन जाते हैं बल्कि व्यस्त लोग भी बन जाते हैं, जो बकवास करते हैं, ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो वे गपशप बन जाते हैं। इसलिए मैं कम उम्र की विधवाओं को सलाह देता हूं, यहां कम उम्र का मतलब 60 से कम है, मैं उन्हें शादी करने की सलाह देता हूं। अब हमारे पश्चिमी समाज में इसे अपमानजनक के रूप में देखा जा सकता है। उसे वकील, कॉरपोरेट कार्यकारी, एयरलाइन पायलट या सेना जनरल बनने के लिए सलाह क्यों नहीं दी जाती? लेकिन हम प्राचीन विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, और हम एक ऐसी दुनिया के बारे में भी बात कर रहे हैं जिसमें शादी एक अच्छी बात है। पश्चिमी समाज विवाह को नापसंद करता है क्योंकि यह आपके करियर के रास्ते में आता है, लेकिन हम देखेंगे कि पश्चिमी संस्कृति के लिए इसका क्या परिणाम होता है। मुझे नहीं लगता कि अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। ईसाई महिलाओं के लिए शादी के लिए पुरुष ढूंढना और इसके विपरीत यह एक अच्छी बात है। और फिर यदि वे बच्चे पैदा करने, सृजन जनादेश, अपने घरों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त युवा हैं। अब देखिए, वहां महिला घर संभाल रही है, पति पत्नी मिलकर काम चलाते हैं, उसके पास अपनी चीजें हैं, ताकि दुश्मन को बदनामी का मौका न मिले। यदि वह प्रलोभन में पड़कर इधर उधर सोती है तो बदनामी का कारण बनेगा। वास्तव में कुछ लोग पहले ही नीति से विमुख हो चुके हैं, तो यह दुखद है। वह इस पर अच्छा काम करता है, लेकिन पॉल ने अनुभव से स्पष्ट रूप से सीखा था कि लोग मुफ्त देखभाल का फायदा उठाते हैं। दो थिस्सलुनीकियों 3 कहता है, यदि वे काम न करें तो उन्हें खाने न दें। इसलिए यदि हम चर्च में सक्षम व्यक्ति हैं तो हमारे लिए उस उदारता की भरपाई करने के तरीके होने चाहिए जिसके लिए हम चर्च पर निर्भर हो सकते हैं। ऐसे तरीके होने चाहिए जिनसे हम, जैसा कि पॉल इफिसियों में कहते हैं, दूसरों को देने के लिए अपने हाथों से काम कर सकें। वह उन लोगों से यही कहता है जिन्हें चोरी करने का प्रलोभन होता है। अपने हाथों से काम करना सीखें ताकि आप अन्य लोगों को कुछ दे सकें। युवा इच्छाओं को सृजन जनादेश के परिणामों में शामिल किया जाना चाहिए। जवानी की चाहत गलत नहीं होती। यौन इच्छाएं ईश्वर प्रदत्त हैं। मैं इसे रेखांकित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग यह भूल जाएं कि हम भगवान की छवि में बने हैं और हम पुरुष और महिला के रूप में बने हैं। और जबकि यौन अनैतिकता गलत है, कामुकता ईश्वर की ओर से एक उपहार है और इसकी पुष्टि की जानी है, लेकिन इसे सकारात्मक दिशाओं में चुनौती दी जानी चाहिए। और पॉल ने पहले ही विवाह का उल्लेख किया है और अब उसने कुछ बार विवाह और कुछ संबंधों का उल्लेख किया है और वह इसकी पुष्टि करता है। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। हमारा समाज वैवाहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि नहीं करता क्योंकि यह वैयक्तिकता के रास्ते में आता है। तो यह यौन अभिव्यक्ति की पुष्टि करता है, लेकिन यह इस तरह से इसकी पुष्टि करता है जो नैतिकता और व्यक्तियों के चरित्र के लिए विनाशकारी है। क्योंकि जब हम आसपास सोते हैं तो यह हमारे चरित्र के घर के बोर्ड फाड़ देता है। हमें वास्तविक शारीरिक रोग संबंधी बीमारियों से अवगत कराने के अलावा, इसके अलावा पवित्र शास्त्र से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें पुरुष की जिम्मेदारी को देखें, क्योंकि बाइबल पुरुषों पर जिम्मेदारी डालती है, महिलाओं पर नहीं। जब कोई भाई किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है जो उसकी पत्नी नहीं है, तो वह किसी और को धोखा दे रहा है। आपको उस महिला पर कोई अधिकार नहीं है जो आपकी पत्नी नहीं है। अगर वह सहमति दे रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं। यदि आप ईसाई हैं तो आपको उस एक महिला के लिए आरक्षित रहना होगा जो आपकी पत्नी होगी। और हमें एक ऐसी संस्कृति मिली है जहां अक्सर ईसाई युवा समूहों में भी लोग सेक्स करने के तरीके ढूंढते हैं, और ये सही नहीं है और यह स्वस्थ नहीं है। और यदि आप स्वयं को नष्ट करना चाहते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे लोगों को नष्ट कर रहे हैं तो आपको अपने पड़ोसी से प्यार करना चाहिए। आपको उनके साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए। और हमारी संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ चलता रहता है और यह एक अच्छी बात है। मेरा मतलब है, इससे बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। ऐसे रिसॉर्ट्स हैं जहां आप जा सकते हैं। आप सेक्स यात्राओं, फिल्मों, टीवी, मनोरंजन, नाइट क्लबों, सभी प्रकार के तरीकों पर जा सकते हैं जहां लोग बस अपनी कल्पनाओं को जीते हैं, और बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, और बहुत से लोग बहुत मजा करते हैं, और यह एक बन जाता है जीवन शैली। इसके अलावा मुझे बताया गया है कि यह आदत बनाने जैसा है। मुझे लगता है कि इसीलिए इसे वाइस कहा जाता है, या इसे वाइस कहा जाता था। इस तरह के जीवन को बुराई कहा जाता था, जो बुरे व्यवहार के लिए एक अच्छा शब्द है जो अंत में आपको नष्ट कर देगा। खैर, पॉल इस नकारात्मक प्रकाश में कामुक इच्छाओं के सागर में डूबा हुआ है। वह उन्हें शामिल न करने की चेतावनी देता है क्योंकि वे उसी दिशा में ले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे ईसाई दृष्टिकोण से देखें तो यह लोगों के साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है, क्योंकि कामुकता हमारे चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मानवीय रूप से कहें तो यह पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रतीकों में से एक है। आप जानते हैं, अच्छा खाना हम दिन में 3 बार खाते हैं। विपरीत लिंग के सदस्यों और विशेष रूप से अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ हमारे संचार के माध्यम से प्रतिदिन दोहराई जाती है। पति पत्नी के बीच यौन अनुभव होता है। बाइबल में इन बातों की पुष्टि की गई है और हमें चर्च में इन बातों के प्रति स्वस्थ सम्मान की आवश्यकता है। इसलिए युवा इच्छाओं को दिशा दी जानी चाहिए। पॉल विधवाओं को विवाह के लिए प्रोत्साहित करके कुछ नकारात्मक नहीं कह रहा है। वह बहुत ही सकारात्मक बात कह रहे हैं और उन्हें उस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं जिस पर ईश्वर आशीर्वाद देंगे। इस सब में निर्णय दांव पर है। पद 12, वे स्वयं ही निर्णय लाते हैं। यह काफी गंभीर है। साथ ही सामुदायिक विनाश। श्लोक 13, चारों ओर गपशप और बकवास फैलाने की यह तस्वीर जो समुदाय के लिए विनाशकारी है। और फिर शैतानी धोखा। कुछ लोगों ने पहले ही दुष्ट शैतान को दूर कर दिया है। पादरी को विधवाओं और उनकी देखभाल करने वालों को सकारात्मक प्रोत्साहन देकर यह सब विफल करना चाहिए। ऐसी संरचनाएं स्थापित करके कि उनके पास सूची हो, वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि इसमें कौन है, कौन नहीं है, इत्यादि। यह उनके आध्यात्मिक निरीक्षण का हिस्सा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 2:12 का क्या अर्थ है, तो उन्हें व्यायाम प्राधिकार सिखाने की अनुमति न दें। यह विधवा देखभाल प्रशासन व्यायाम प्राधिकार का हिस्सा है। किसी को इसका प्रभारी होना चाहिए। चर्च की विधवाओं के लिए कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति जवाबदेह है और इसकी शुरुआत पादरी नेता से होती है। यदि किसी आस्तिक महिला की देखभाल में विधवाएं हैं, तो उसे उनकी मदद करना जारी रखना चाहिए और चर्च पर उनका बोझ नहीं पड़ने देना चाहिए, ताकि चर्च उन विधवाओं की मदद कर सके जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। तो शायद यह एक माँ और दादी वाली बेटी है। हो सकता है कि यह चर्च की कोई महिला हो जो अपेक्षाकृत धनी हो और वह कई विधवाओं की देखभाल कर रही हो। पॉल कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि कुछ विधवाएं ऐसी भी होती हैं जिनके पास चर्च के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता। इसलिए यदि लोग इसे स्वयं कर सकें, तो उनके पास अधिक शक्ति होगी। यदि लोग स्वयं ऐसा कर सकते हैं, तो वे यह सब चर्च से छीन नहीं सकते। जिन विधवाओं को वास्तव में जरूरत होती है, वे विधवाएं ही पात्र होती हैं। वे 60 वर्ष के हैं, वे धर्मात्मा हैं, उनके पास अन्य माध्यमों से समर्थन नहीं है। अब हम बड़ों पर आते हैं। जो बुजुर्ग चर्च में मामलों को अच्छी तरह से निर्देशित करते हैं, वे दोहरे सम्मान के योग्य हैं, खासकर वे जिनका काम उपदेश देना और पढ़ाना है। मेरे संप्रदाय में हम इन शिक्षण को बुजुर्ग कहते हैं। हमारे पास पादरी नेता हैं जिन्हें बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, और उन्हें शासक बुजुर्ग कहा जाता है, और इसलिए उनके पास चर्च और देहाती देखभाल जिम्मेदारियों में आध्यात्मिक अधिकार है, लेकिन वे बुलाए गए और नियुक्त शिक्षण पादरी नहीं हैं जो आमतौर पर मदरसा में गए हैं। और अलग अलग चर्च इसे अलग अलग तरीकों से करते हैं, लेकिन कुछ चर्च सोचते हैं कि यहाँ आपका तात्पर्य शिक्षक बुजुर्गों या पर्यवेक्षकों से है जो उपदेश देते हैं और पढ़ाते हैं, और पर्यवेक्षक जो पढ़ाने में सक्षम हैं, लेकिन यह उनकी विशेषता नहीं है। और कभी कभी आप चर्चों में देखते हैं, आप प्रशासन के पादरी या आत्मसात करने वाले या शिष्यत्व के पादरी देखेंगे जो चीजें स्थापित करते हैं और वे कुछ सिखाते हैं, लेकिन वे वास्तव में चर्च के शिक्षण और उपदेश देने वाले पादरी नहीं हैं। मुझे लगता है कि आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चर्च के आदेशों में हम इसे कैसे जीते हैं, इसमें बहुत लचीलापन है। लेकिन यह एक कारण बताता है कि पादरी सम्मान के योग्य क्यों हैं, और पुराने नियम का एक श्लोक है, जब बैल अनाज रौंद रहा हो तो उसका मुंह मत दबाओ। दूसरा न्यू टेस्टामेंट से है, श्रमिक अपनी मजदूरी का हकदार है। और मुझे लगता है कि यह सबूत है नंबर एक कि ल्यूक इस समय तक लिखा गया था, क्योंकि यह ल्यूक के सुसमाचार से आता है। श्रमिक अपनी मजदूरी का हकदार है। और न्यू टेस्टामेंट लेखन में ग्रेव शब्द यहां धर्मग्रंथ का अनुवाद करता है। उस शब्द का अर्थ मौखिक परंपरा नहीं हो सकता। और यदि इसे पुराने नियम की कहावत के साथ कोष्ठक में रखा गया है तो यह कह रहा है कि नए नियम की कविता भी धर्मग्रंथ है। तो यह पॉल पवित्र शास्त्र को पुराने और नए टेस्टामेंट दोनों कह रहा है। किसी बुजुर्ग के विरुद्ध किसी आरोप पर तब तक विचार न करें जब तक कि वह दो या तीन गवाहों द्वारा न लाया गया हो। यह पुराने नियम की मोजेक है। साक्षी का न्यायशास्त्र तथ्य दो या तीन गवाहों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। परमेश्वर अनेक गवाहों द्वारा अपनी गवाही देता है। यीशु कहते हैं कि विभिन्न गवाहों ने प्रमाणित किया है कि मैं कौन हूं। जॉन द बैप्टिस्ट, मेरे चमत्कार, पवित्र आत्मा, ईश्वर पिता। इस प्रकार हम परमेश्वर के घर में तथ्यों को स्थापित करते हैं। और तीमुथियुस साक्ष्य के इस भंडार में है जहां विरोध है, विवाद होने वाला है जिसे उसे संभालना होगा। आप कैसे जानते हैं कि किसी से कब और कैसे शुल्क लेना है? खैर, अगर कोई किसी पर सिर्फ आरोप लगाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। इसलिए सुनी सुनाई बात पर मत जाइए। परंतु वे बुजुर्ग जो पाप कर रहे हैं, ऐसे बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनके खिलाफ कोई आरोप लगाता है, और यह सच हो सकता है। अच्छा, सबके सामने डांटना कि दूसरे लोग चेता सकें। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक बहुत बड़ा संप्रदाय था जहां यह निर्धारित किया गया था कि हजारों, ठीक है, 790 पादरी यौन शोषण के दोषी थे। और यह उस संप्रदाय के नेताओं को पता था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। उन्होंने इसे शांत रखा। उन्होंने उन्हें सबके सामने नहीं डांटा कि दूसरे लोग चेता सकें। और इसके बहुत सारे परिणाम होंगे। पॉल कहते हैं, जब बुजुर्ग, जिन्हें सार्वजनिक रूप से चर्च के अधिकारियों के रूप में जाना जाता है, प्रभारी तरीकों से उल्लंघन करते हैं, तो मेरा मतलब यह नहीं है कि वे गति सीमा से 3 मील प्रति घंटा अधिक ड्राइव करते हैं, या वे 2 मिल्कशेक पीते हैं, और वे अपना वजन बढ़ाते हैं, और वे नहीं हैं अपने शरीर की सही देखभाल करना। मैं कह रहा हूं कि जब वे बेईमान व्यापारिक आचरण, झूठ बोलना, गपशप करना, यौन अनैतिकता, चोरी करना, तो उन्हें फटकार लगाई जानी चाहिए ताकि हर कोई चर्च के नेतृत्व की अखंडता को देख सके। और फिर पॉल उस पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाता है। मैं आपसे शुल्क लेता हूं, वह आदेश फिर से है। मैं तुम्हें मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों में ईश्वर की दृष्टि में आदेश देता हूं कि इन निर्देशों का पक्षपात के बिना पालन करो। पक्षपातवश कोई कार्य न करें। पादरी नेतृत्व में उन लोगों का पक्ष लेना वास्तव में आकर्षक है जो हमारा समर्थन करते हैं। और समस्या यह है कि मनुष्य जैसे हैं वैसे ही हैं। कभी कभी लोग पादरी का पक्ष लेंगे और फिर बाद में वे पादरी से अनुग्रह चाहते हैं। और यह तब तक ठीक है जब तक वे आपसे पाप करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वे जो कह रहे हैं, क्या आप उसे नजरअंदाज कर देंगे, या आप मुझे यहां कुछ काम से हटा देंगे, या आप मेरे बेटे को चर्च में यह काम करने का ठेका दिलाने में मदद करेंगे क्योंकि उसे एक नया व्यवसाय मिला है। मैं चर्च का बहुत समर्थन करता हूं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे चर्च में अपने समर्थकों के स्पष्ट रूप से निर्दोष अनुरोधों से एक पादरी को भ्रष्ट किया जा सकता है। और एक पादरी नेता के रूप में निष्पक्ष रहना बहुत कठिन है, लेकिन यह पादरी पत्र के दृष्टिकोण का हिस्सा है। और यह बहुत गंभीर है क्योंकि यह मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों में ईश्वर की दृष्टि में है। अब यह वाकई गंभीर है और इसलिए मुझे लगता है कि यह एक निष्पक्ष पादरी नेता होने और आपकी देखभाल में सभी लोगों के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध होने की कठिनाई के स्तर को दर्शाता है, लेकिन उन तरीकों के प्रति सतर्क रहना है जिनसे वे अपने रिश्ते को मोड़ना, बिगाड़ना और फायदा उठाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए आपके साथ। अब यह बात 1 तीमुथियुस 3 के समय की है। हाथ लगाने में जल्दबाजी न करें। जब एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया तो ऐसा लगा कि इसकी सार्वजनिक मान्यता थी, और यह आज भी कई चर्चों में सच है कि जब किसी को पादरी या उपयाजक या उस चर्च में उन्हें जो भी कहा जाता है पादरी नेता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है तो हाथ रखना होता है। पॉल कहते हैं कि ऐसा करने में जल्दबाजी न करें, दूसरों के पापों में हिस्सा न लें। निहितार्थ यह है कि यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो आप ऐसे लोगों को नियुक्त कर सकते हैं जो ईश्वर की खोज की तुलना में अपने पाप में और भी अधिक हैं, और क्योंकि आप उनका समर्थन करते हैं आप उनकी गलतियों में भागीदार बनेंगे। आप इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। अपने आप को पवित्र रखें। अब इसका युवा महिलाओं और बहनों से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध फिर से ऐसे लोगों को सेवा में बढ़ावा देने से है जो मसीह के नाम को और चर्च के नाम को शर्मसार करने वाले हैं। तो हमने सिर्फ बड़ों के सम्मान और बड़ों को अच्छे से संभालने के बारे में बात की। अब शायद वह छोटे को संभालने की बात कर रहा है। उन लोगों को संभालना जो महत्वाकांक्षी हैं और जिन पर आप हाथ डालने जा रहे हैं। ऐसा करने में जल्दबाजी न करें। फिर आत्म देखभाल। वह टिमोथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। टिमोथी ने शराब पीना छोड़ दिया है और पॉल कहता है कि थोड़ी सी शराब अच्छी होगी तीमुथियुस, और हम इस कथन की चिकित्सीय खूबियों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। पादरियों को अपनी भौतिक आवश्यकताओं और स्थितियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और विनाशकारी रूप से तपस्वी नहीं होने की आवश्यकता है। तपस्वी का अर्थ है कि तुम स्वयं को अस्वीकार करते हो, और शायद इस विचार के साथ कि जितना अधिक मैं स्वयं को नकारूंगा ईश्वर उतना ही अधिक प्रसन्न होगा, क्योंकि क्या ईश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी हों? और निःसंदेह परमेश्वर नहीं चाहता कि हम दुखी हों, और वह पहले ही कह चुके हैं कि अच्छा खाना अच्छा है। अच्छे भोजन में अच्छी शराब और ईश्वर की रचना का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल होगा, लेकिन थोड़ी सी शराब से रुकना आसान नहीं है। इसलिए वह कहता है थोड़ी सी शराब। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पेट की समस्या है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर रात एक बोतल शराब पिए। अपनी समस्याओं को भूल जाओ। मुझे लगता है कि कोई भी टिप्पणी यह कहेगी कि शराब में अल्कोहल कुछ जीवों को मार देगा और पानी को पीने के लिए सुरक्षित बना देगा, तो वह यही कह रहा था, क्योंकि उन्हें बार बार बीमारियां होती रहती हैं। मैं वास्तव में एक जर्मन व्यक्ति को जानता था। वह अब भगवान के साथ है, लेकिन उन्होंने एक अफ्रीकी देश में काफी सर्वेक्षण किया, और यूरोपीय लोगों के खाने के लिए पानी और भोजन हमेशा सुरक्षित नहीं थे, और उन्होंने कहा कि खाने के बाद वे हमेशा स्नैप्स पीते थे, और यह एक प्रकार की उच्च अल्कोहल सामग्री है, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि इससे उन्हें बीमार होने से बचाने में मदद मिली। मुझे नहीं पता कि यह सच था या नहीं, लेकिन यही विचार होगा। अब एक बड़े भोजन के बाद एक गिलास स्नैप्स, एक गिलास नहीं बल्कि एक शॉट, यह आपको नशे में नहीं डालेगा, लेकिन यह आपके पेट की सामग्री को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। और पॉल यहाँ यही कह रहा है। अध्याय के सारांश में कुछ लोगों के पाप स्पष्ट हैं। न्याय के स्थान पर उनसे आगे पहुंचते पहुंचते दूसरों के पाप उनके पीछे छूट जाते हैं। इसी प्रकार अच्छे कर्म भी स्पष्ट होते हैं, जो स्पष्ट नहीं होते वे भी सदैव छिपे नहीं रह सकते। तो वह जो कह रहा है वह यह है, तीमुथियुस, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उस पर कायम रहो। लंबे समय में यह खत्म हो जाएगा, आप इसका ज्ञान देखेंगे। निष्कर्ष निकालने के लिए, अच्छी देहाती देखभाल उच्च स्तर की व्यावहारिक पहुंच को कायम रखती है। श्लोक 16, विधवाओं के बारे में। चर्च पर उनका बोझ न डाला जाए ताकि चर्च उन विधवाओं की मदद कर सके जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। अच्छी देहाती देखभाल उच्च स्तर की व्यावहारिक पहुंच को बढ़ावा देती है और कायम रखती है। यही कारण है कि पादरियों को मेहमानवाज होना चाहिए, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से अन्य लोगों की देखभाल करने का एक उदाहरण दिखाते हैं। नंबर 2, जबकि बुजुर्ग सम्मान के पात्र हैं, उन्हें पक्षपात के बिना जांच और निर्देशन की भी आवश्यकता होती है और उन्हें उच्च स्तर पर रखा जाता है। इसलिए इसे भावी प्राचीनों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ पुरुष इसे एक सम्मान के रूप में देखे बिना नहीं रह सकते। मैं बुजुर्ग चुनाव की सूची में हूं, और जितना अधिक हम ऐसा सोचते हैं, हमें बुजुर्ग होने का अधिकार उतना ही कम हो जाता है। बुजुर्ग एक जिम्मेदारी है। यह एक बेसबॉल कोच होने से कहीं अधिक जिम्मेदारी होगी। बेसबॉल कोच बनना एक तरह से मजेदार साबित होता है। बुजुर्ग होना बहुत फायदेमंद है, लेकिन बेसबॉल कोच होने के स्तर पर यह मजेदार नहीं है। वास्तव में प्रार्थना में और कभी कभी लोगों को परामर्श देने में या मुद्दों पर चर्चा करने में बहुत सारे अकेले घंटे होंगे। शायद कुछ रातों की नींद हराम, देर रात की बैठकें। हो सकता है कि आपका अपना बटुआ खत्म हो जाए, क्योंकि आपको ऐसी जरूरतें दिखेंगी जिन्हें आप संबोधित कर सकते हैं और आप चर्च को परेशान नहीं करना चाहते हैं। मेरा मतलब है, बुजुर्ग होना एक बलिदान है। यह कोई सीईओ का पद नहीं है, और इसके लिए उच्च मानक की आवश्यकता है। इसलिए लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहिए। फिर पादरी का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पादरी खुद को भगवान और लोगों के निपटान में रख रहा है, तो कम प्रलोभन होता है जब लोग सोचते हैं, ओह, मैं उसके जैसे बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान के साथ एक आरामदायक नौकरी करना चाहता हूँ। वह सेवा और मसीह जैसे आत्मबलिदान के लिए माहौल तैयार करेगा। और जब वह किसी और को इस बारे में सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्होंने रुचि दिखाई है, तो वे देख पाएंगे, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूँ। और यदि वे इसकी इच्छा करते हैं, तो इसकी अधिक संभावना होगी, क्योंकि वे वास्तव में इसे देखते हैं और उन्हें बस यह महसूस होता है कि ईश्वर का आह्वान है, मैं इस चर्च में सुसमाचार सेवा का एजेंट बनना चाहता हूँ। और हाँ, इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यह दुनिया की सबसे संतुष्टिदायक चीज है। ईश्वर के साथ सही होने से अधिक संतुष्टिदायक कुछ भी नहीं है। यह मनोरंजन से अधिक संतुष्टिदायक है। यह जेट चलाने से भी अधिक संतुष्टिदायक है। यह मोटरसाइकिल से भी अधिक संतुष्टिदायक है। यह यात्रा से भी अधिक संतुष्टिदायक है। दुनिया में सबसे अधिक संतुष्टि देने वाली चीज जो हम कर सकते हैं, वह है सेवा और पूजा का स्थान ढूंढना और भगवान के उपहारों का आनंद लेना और भगवान के लिए सेवा करना और उसमें रहना और आराम के मौसम का आनंद लेना और झील पर या किसी भी जगह पर शाम का आनंद लेना। मेरा मतलब है, दुनिया में कई जगहों पर जीवन में आनंद के ढेरों मौके आते हैं, लेकिन भले ही हम दुनिया के किसी ऐसे स्थान पर हों जहां गरीबी है और उत्पीड़न है और कोई छुट्टी यात्राएं नहीं हैं और हम दिन में एक बार भोजन कर रहे हैं। यहाँ तक कि दुनिया के उन स्थानों में भी भगवान हमारे पास आते हैं। वह अपने लोगों से मिलता है और वह सेवा को फलदायी बनाता है और वह अपनी उपस्थिति में हमारे बलिदान को आनंदमय बनाता है। इसलिए बुजुर्ग बनना या विधवाओं की देखभाल करना बहुत अच्छी बात है। तीसरा, तिमोथी को नेतृत्व सक्षम बनाने और आत्म देखभाल में सक्रिय होना चाहिए। खुद की देखभाल। लोग बुराई के लिए या भलाई के लिए कैसे जीते हैं, यह एक सतत देहाती चिंता है और हमें उस दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो पॉल ने तिमोथियुस के लिए निर्धारित किया है। चीजें वैसी ही सामने आएंगी जैसी वे वास्तव में हैं, और इसलिए इस समय हमें उस भविष्य के लिए परित्याग की भावना के साथ जीने की जरूरत है जो ईश्वर निर्धारित करेगा। तुम्हें पता है पाप पाप हैं। अच्छा तो अच्छा है, जो हम देख सकते हैं वह इस समय सत्य है, उसके साथ चलें और दोष ईश्वर पर छोड़ दें। सिर्फ एक व्यावहारिक मत बनो। ओह हाँ, यह कहता है कि यह पाप है, लेकिन देखो यह कैसे काम करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो दुनिया हमें स्वीकार करेगी। या यह सचमुच कठिन है। आइए ऐसा न करें क्योंकि यह बहुत कठिन है। नहीं, अगर यह अच्छा है तो अच्छा है। और लंबे समय में ईश्वर की बुद्धि और ईश्वर की कृपा से हम चीजों को देखेंगे कि वे वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में कैसी हैं। एक तिमोथियुस 5 के लिए हमारे पास इतना ही समय है। धन्यवाद। यह डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू यारब्रो और देहाती पत्रों पर उनकी शिक्षा, देहाती नेताओं और उनके अनुयायियों के लिए प्रेरितिक निर्देश है। सत्र 6, एक तिमोथियुस 5।